एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे विषय में जो अक्सर थोड़ा डरावना सा लगता है पर है बहुत जरूरी, स्टैटिस्टिक्स।
हाँ जी, नमस्कार।
और हम डेविड जे हैंड की किताब है स्टैटिस्टिक्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके और उनके जो बाकी विचार हैं उनके आईने में इसे समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं।
देखिए, आज हम डेटा की बाढ़ में जी रहे हैं, हर तरफ आंकड़े ही आंकड़े हैं।
हाँ, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इलेक्शन पोल्स क्या कह रहे हैं,
कौन सी बीमारी का क्या इलाज है, अर्थव्यवस्था किधर जा रही है,
सब कुछ।
तो सवाल ये उठता है कि भाई इन आंकड़ों का सही मतलब कैसे समझें, कहीं हमें मतलब घुमाया तो नहीं जा रहा।
सही कहा, इसीलिए आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ किताबी नहीं बल्कि बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है। हमारा मिशन है सांख्यिकी के वो जो मोटी मोटी दीवारें लगती है ना, उन्हें तोड़कर उसके पीछे जो जरूरी आइडियाज हैं उन्हें सामने लाना। ये समझना कि अनिश्चितता और जब जानकारी पूरी ना हो उसके बावजूद हम बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं।
हाँ, और दुनिया को ज्यादा साफ नजर से कैसे देखें।
तो चलिए शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिनके विचारों पर आज हम बात कर रहे हैं, डेविड जे हैंड।
हाँ, डेविड हैंड, ये कोई मतलब सिर्फ एक और गणितज्ञ नहीं है। हाँ है, वो इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रोफेसर एमेरिटस, रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बड़े सम्मान मिले हैं।
लेकिन उनकी असली खासियत क्या है?
उनकी असली खासियत है मुश्किल से मुश्किल सांख्यिकी कॉन्सेप्ट्स को आम लोगों की भाषा में समझा देना, ये कला है उनमें।
हाँ, मैंने भी उनकी दूसरी किताबें देखी हैं, जैसे दी इम्प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल, डार्क डेटा। वो सिर्फ रिसर्च पेपर्स नहीं लिखते।
सही, उन्होंने आम लोगों के लिए लिखा है, ये बताने के लिए कि स्टैटिस्टिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे छूती है। और देखिये, वो सिर्फ थ्योरी पर बात नहीं करते, उन्हें पता है कि आंकड़ों का सही इस्तेमाल कितना फायदेमंद हो सकता है
और गलत इस्तेमाल।
हाँ, और गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक। इसीलिए जब वो कुछ कहते हैं तो उसमें एक वजन होता है, एक प्रैक्टिकल समझ होती है।
तो उनकी ये किताब स्टैटिस्टिक्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये क्या करने की कोशिश करती है, इसका मकसद क्या है?
देखिए, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक छोटा पर बहुत दमदार परिचय सांख्यिकी की दुनिया का। इसका मकसद है बिना ज्यादा भारी भरकम फॉर्मूलों के सांख्यिकी के जो मूल सिद्धांत हैं और उसकी ताकत क्या है उसको समझाना।
अच्छा,
ये किताब पूछती है आखिर ये विषय है क्या चीज और ये हमारी दुनिया की समझ को कैसे बदल सकता है।
और इसका सबसे बड़ा आइडिया क्या है, मतलब केंद्रीय तर्क क्या है?
मेरे ख्याल से हैंड का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबरों को जोड़ना घटाना नहीं है, ये असल में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, उससे जूझने का विज्ञान है।
अनिश्चितता का विज्ञान।
हाँ, ये हमें सिखाता है कि जब हमें सब कुछ पता ना हो, जानकारी अधूरी हो, तब भी डेटा से मतलब कैसे निकालें
और समझदारी भरे फैसले कैसे लें।
बिल्कुल। और दूसरा अहम संदेश यह है कि आज के जमाने में थोड़ी बहुत सांख्यिकीय समझ रखना कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है।
हाँ, ये तो मैं मानती हूँ, हम चारों तरफ से आंकड़ों से घिरे हुए हैं, दावे हैं, कभी कभी तो भ्रामक जानकारी भी होती है।
सही, तो स्टैटिस्टिक्स हमें वो चश्मा देती है जिससे हम शोर को सिग्नल से अलग कर सकें,
सच को झूठ से।
हाँ, और असली पैटर्न को, मतलब जो चीज महज इत्तेफाक है, उससे अलग देख सकें। ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक जरूरी टूल है।
ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतारते हैं, किताब के कुछ हिस्सों को देखते हैं। पहला सवाल हैंड उठाते हैं, आखिर ये स्टैटिस्टिक्स है क्या बला?
हाँ,
वो कहते हैं इसे उबाऊ समझने की गलती ना करें, ये सिर्फ तथ्यों की लिस्ट नहीं है।
सही का, इसका असली काम है बदलाव, वेरिएबिलिटी और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, उसको समझना और संभालना।
उदाहरण के तौर पर
सोचिए, मौसम का पूर्वानुमान क्या वो कभी 100% पक्का होता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
या फिर कोई नई दवा का ट्रायल, क्या वो हर मरीज पर एक जैसा असर करती है?
नहीं, उसमें भी फर्क होता है।
हाँ, चीजें बदलती हैं, नतीजे अलग अलग होते हैं। स्टैटिस्टिक्स इसी बदलाव को, इसी वेरिएबिलिटी को समझने और उससे मतलब निकालने का तरीका है।
अच्छा, अगला जरूरी मुद्दा है डेटा, वो कच्चा माल जिस पर पूरी सांख्यिकी टिकी है।
हाँ, और यहाँ हैंड एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, कचरा अंदर तो कचरा बाहर।
गार्बेज इन गार्बेज आउट
मतलब अगर आपका डेटा ही गलत तरीके से इकट्ठा किया गया है या उसमें कोई पक्षपात है तो फिर आप कितना भी बढ़िया विश्लेषण कर ले नतीजा गलत ही निकलेगा।
ये तो बहुत जरूरी बात है।
हाँ, और डेटा इकट्ठा करने के तरीके बहुत मायने रखते हैं। क्या आपने सिर्फ चीजों को दूर से देखा मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टडी या फिर आपने एक नियंत्रित प्रयोग किया कंट्रोल एक्सपेरिमेंट।
नियंत्रित प्रयोग मतलब
जैसे RCTs होते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स मेडिकल रिसर्च में बहुत इस्तेमाल होते हैं। लोगों को रैंडम तरीके से अलग अलग ग्रुप में डालते हैं फिर किसी चीज का असर देखते हैं जैसे कोई नई दवा या कोई नई पॉलिसी।
अच्छा,
कारण और प्रभाव कॉज एंड इफेक्ट जानने का ये सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है।
और सैम्पलिंग पूरी आबादी से तो हम पूछ नहीं सकते।
बिल्कुल, इसलिए एक छोटा हिस्सा चुनते हैं सैंपल, लेकिन वो सैंपल पूरी आबादी का आईना होना चाहिए।
हाँ, वरना नतीजे गलत हो जाएंगे। जैसे अगर सिर्फ अपने अमीर दोस्तों से पूछ लिया कि देश की आर्थिक हालत कैसी है तो जवाब तो पता ही है।
हाँ हाँ सही, इसलिए रैंडम सैम्पलिंग जरूरी है ताकि हर किसी के चुने जाने का बराबर मौका हो।
ठीक है, तो डेटा आ गया, बढ़िया, अब उसका क्या करें?
हाँ, अब आता है अध्याय 3, डेटा को समझने लायक बनाना, समराइजिंग डेटा। यहीं पर आते हैं हमारे पुराने दोस्त औसत, मीन, मीडियन, मोड।
औसत, ये तो हम सब जानते हैं।
हाँ, पर यहाँ हैंड एक चेतावनी देते हैं, सिर्फ औसत पर मत जाइए।
क्यों?
खासकर मीन, जो गणितीय औसत होता है ना, वो बहुत भ्रामक हो सकता है। सोचिए किसी गांव में 99 लोग हैं, उनकी कमाई 10,000 रुपए महीना है और एक आदमी है उसकी कमाई 1 करोड़ महीना है।
अच्छा,
अब अगर आप मीन निकालेंगे तो औसत कमाई बहुत ज्यादा दिखेगी।
हाँ, वो एक आदमी की वजह से।
बिल्कुल, पर क्या वो गांव की असली तस्वीर है? शायद नहीं। ऐसे में मीडियन यानी बीच वाली कमाई वो ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाएगा।
ये तो सोचने वाली बात है।
और औसत के साथ ये जानना भी जरूरी है कि डेटा कितना फैला हुआ है,
मतलब सारे नंबर आसपास है या बहुत दूर दूर।
हाँ, जैसे दो बल्लेबाज हैं, दोनों का औसत 50 है, लेकिन एक शायद हर मैच में 40 से 60 के बीच रन बनाता है, दूसरा कभी 0 पर आउट होता है तो कभी 150 बना देता है।
हाँ, दोनों बहुत अलग खिलाड़ी हुए।
बिल्कुल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे माप इसी फैलाव को बताते हैं।
और हाँ, ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, ये भी तो डेटा समझने में मदद करते हैं।
बहुत ज्यादा, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये बात यहाँ भी लागू होती है, पैटर्न एकदम से दिख जाते हैं।
ठीक है, अब आता है एक दिलचस्प मोड, अध्याय 4, संभाव्यता,
प्रोबेबिलिटी।
हाँ, अब तक हम उस डेटा की बात कर रहे थे जो हमारे पास है।
हाँ,
अब हम उस दुनिया के बारे में अनुमान लगाने जा रहे हैं जिसे हमने पूरी तरह देखा नहीं है,
अज्ञात के बारे में अनुमान।
हाँ, और संभाव्यता इसी अनिश्चितता की भाषा है, प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता।
थोड़ा सा है, लेकिन इसका मूल आइडिया बस ये समझना है कि किसी घटना के होने की कितनी संभावना है।
जैसे सिक्का उछालने पर हेड जाने की संभावना 50% है।
बिल्कुल, और ये सांख्यिकीय अनुमान, इन्फ्रेंस की नींव है, मतलब छोटे सैंपल से पूरी आबादी के बारे में अंदाजा लगाने का आधार।
अच्छा, तो यहीं से हम अगले अध्याय पर पहुंचते हैं।
हाँ, अध्याय 5, अनुमान और निष्कर्ष, एस्टिमेशन एंड इन्फ्रेंस। ये सांख्यिकी का आप कह सकते हैं दिल है। हम सैंपल जैसे 1000 लोगों का सर्वे, उससे मिली जानकारी का इस्तेमाल करके पूरी आबादी जैसे देश के सभी वोटर, उनके बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं।
कैसे?
इसमें 2 मुख्य चीजें आती हैं, अनुमान, एस्टिमेशन, और परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
अनुमान मतलब अंदाजा लगाना।
हाँ, जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल का इस्तेमाल करना। इसे ऐसे समझिए, आप मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक रहे हैं। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये नहीं कि मछली यानी सही मान इस जाल में है ही, इसकी 95% गारंटी है।
तो फिर क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि अगर आप इसी तरह का जाल 100 बार फेंकें तो लगभग 95 बार मछली उसमें फंसेगी।
अच्छा,
ये आपके तरीके की विश्वसनीयता बताता है।
अच्छा, थोड़ी तकनीकी बात है ये।
हाँ, पर जरूरी है। और दूसरा है परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये किसी दावे को टेस्ट करने का एक मतलब वैज्ञानिक तरीका है।
जैसे
क्या नई खाद पुरानी से बेहतर है? हम पहले मान लेते हैं कि कोई फर्क नहीं।
हाँ?
इसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। फिर देखते हैं कि क्या हमारे डेटा में इतना दम है कि हम इस कोई फर्क नहीं वाली बात को खारिज कर सकें।
और यही पी वैल्यू आता है।
हाँ, यही आता है पी वैल्यू, और इसे अक्सर गलत समझा जाता है।
क्या गलती होती है?
लोग सोचते हैं पी वैल्यू बताता है कि उनका दावा सही है या गलत, नहीं, पी वैल्यू बस ये बताता है कि अगर कोई फर्क नहीं वाली बात सच होती तो जो नतीजे आपको मिले हैं वैसे या उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे मिलने की संभावना कितनी कम या ज्यादा थी। अगर ये संभावना बहुत कम है, जैसे 5% से कम, तो हम सोचते हैं शायद कोई फर्क नहीं वाली बात गलत है। लेकिन इसमें सावधानी जरूरी है, ये पक्का सबूत नहीं है।
समझ गई, थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है ये।
बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 6, मॉडल और रिग्रेशन पर। स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होते हैं? ये दुनिया की किसी प्रक्रिया का एक गणितीय सरलीकरण होते हैं।
जैसे मौसम का मॉडल
या अर्थव्यवस्था का मॉडल।
हाँ बिल्कुल, कोई भी मॉडल 100% सही नहीं होता, सब सरलीकरण है। लेकिन एक अच्छा मॉडल हमें चीजों को समझने और शायद भविष्यवाणी करने में मदद करता है।
और रिग्रेशन ये क्या है?
रिग्रेशन एनालिसिस ये दो चीजों के बीच संबंध को देखता है।
जैसे जैसे क्या ज्यादा पढ़ाई करने से ज्यादा कमाई होती है? रिग्रेशन हमें इस रिश्ते की दिशा और उसकी मजबूती बता सकता है।
अच्छा,
लेकिन और ये बात, ये शायद पूरी किताब का सबसे जरूरी सबक है,
क्या
सहसंबंध कारणता नहीं है। कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन।
हाँ ये तो बहुत सुना है।
सुना होगा। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ होती हैं ये मतलब नहीं कि एक की वजह से दूसरी हो रही है।
वो आइसक्रीम वाला उदाहरण,
हाँ, क्लासिक उदाहरण। गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और क्राइम रेट भी।
तो क्या आइसक्रीम खाने से लोग अपराधी बन जाते हैं?
हाँ, जाहिर है नहीं, दोनों का कारण है गर्मी।
हाँ
हैंड बार बार जोर देते हैं कि कारण जानने के लिए अक्सर सिर्फ डेटा देखना काफी नहीं होता। क्या करना पड़ता है?
नियंत्रित प्रयोग, RCTs।
हाँ, अक्सर वही करने पड़ते हैं।
ठीक है, और आखिरी अध्याय?
अध्याय 7, सांख्यिकी विज्ञान। यहाँ हैंड तर्क देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ गणित की एक शाखा नहीं है या दूसरे विज्ञानों का नौकर नहीं है, ये अपने आप में एक जरूरी वैज्ञानिक अनुशासन है।
और आज के जमाने में तो इसकी अहमियत और बढ़ गई होगी, बिग डेटा, AI।
बिल्कुल, बिग डेटा और AI के जमाने में इसकी भूमिका और भी बढ़ गई है। कई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की नींव सांख्यिकीय ही है।
वो सांख्यिकीविदों की नैतिक जिम्मेदारी की भी बात करते हैं।
हाँ, बहुत जरूरी बात, सही तरीकों का इस्तेमाल करना, नतीजों को ईमानदारी से बताना और हमेशा ये याद रखना कि हमारे निष्कर्षों में कितनी अनिश्चितता है, उसे छुपाना नहीं।
तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि सांख्यिकीय सोच, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, आज के नागरिक के लिए एक बुनियादी जरूरत है।
एकदम सही।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े सबक क्या निकले जिन्हें हम याद रख सकते हैं?
हेला, मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही कि स्टैटिस्टिक्स निश्चितता का नहीं, अनिश्चितता का विज्ञान है। ये हमें पक्के जवाब नहीं देता, बल्कि संभावनाओं और भरोसे की हदें बताता है।
हाँ, जैसे मौसम का पूर्वानुमान या चुनावी सर्वे, हमें उनके साथ जीना सीखना होगा।
बिल्कुल। दूसरा, डेटा की क्वालिटी सब कुछ है, कचरा अंदर तो कचरा बाहर।
हमेशा पूछें ये डेटा आया कहाँ से, कैसे इकट्ठा किया गया, क्या सैंपल सही था।
हाँ, व्हाट्सएप पर आने वाली हर स्वास्थ्य सलाह या सर्वे पर कूदने से पहले ये सवाल जरूरी हैं।
तीसरा,
और इसे तो गांठ बांध लेना चाहिए, सरसंबंध और कारणता में जमीन आसमान का फर्क है।
हाँ, ये गलती बहुत होती है अखबारों में, बातों में।
बिल्कुल, दो चीजों को जुड़ा देखकर ये मान लेना कि एक की वजह से दूसरी हुई, ये बहुत आम गलती है।
चौथा सबक,
औसत अक्सर कहानी छुपाते हैं, सिर्फ एवरेज देखकर फैसला ना करें।
पूछें कि डेटा कितना फैला हुआ है, क्या बहुत ज्यादा असमानता है।
हाँ, जैसे किसी शहर की औसत आय जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि लोगों की आय में कितना फर्क है, अमीर और गरीब के बीच खाई कितनी है।
और पांचवा,
छोटे सैंपल से बड़े नतीजे निकालने की ताकत तो है, पर खतरा भी है। ये कमाल की बात है कि हम हजार लोगों से पूछकर पूरे देश के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं।
हाँ ये तो है,
लेकिन ये अंदाजे हमेशा अंदाजे ही रहेंगे, उनमें गलती की गुंजाइश होगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल और पी वैल्यू को सही ढंग से समझना जरूरी है, वरना हम गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
बिल्कुल। अब कुछ यादगार बातें जो हांड कहते हैं, वो इन सबको को और पुख्ता करती हैं।
हाँ, उनकी किताबों में कुछ बहुत अच्छे कोट्स मिलते हैं, जैसे ये, सांख्यिकी अन्य विज्ञानों का सेवक नहीं बल्कि अनिश्चितता से भरी दुनिया में सीखने और रास्ता खोजने का मौलिक विज्ञान है। ये वो टूलकिट है जिसका उपयोग हम सच्चाई के संकेत को यादृच्छिक शोर से अलग करने के लिए करते हैं।
वाह, मतलब ये सिर्फ एक टूल नहीं, सोचने का एक बुनियादी तरीका है, फंडामेंटल साइंस।
हाँ, और ये वाला भी मुझे बहुत पसंद आया औसत के बारे में, फैलाव के माप के बिना औसत बताना वैसा ही है जैसे मौसम की रिपोर्ट केवल तापमान के साथ देना, हवा की गति बताए बिना। आपके पास एक संख्या है, लेकिन आप कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चूक रहे हैं।
हाँ, ये सीधे मुद्दे की बात है, सिर्फ नंबर नहीं, पूरी कहानी समझनी है।
और मॉडल्स के बारे में वो कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि क्या एक सांख्यिकीय मॉडल सत्य है, सभी मॉडल सरलीकरण हैं और इसलिए गलत हैं, बल्कि यह है कि क्या मॉडल उपयोगी है।
मतलब परफेक्ट न हो पर काम का हो।
हाँ, क्या वह हमें दुनिया को समझने में मदद करता है, यही सवाल है।
और सहसंबंध वाली बात पे
उस पर जोर देते हुए कहते हैं, यह खोजना कि दो चीजें सहसंबंध हैं एक जांच की शुरुआत है, अंत नहीं। एक सांख्यिकीविद का काम जासूस की तरह छिपे हुए कारणों को खोजना है।
जासूस की तरह, यह अच्छा कहा।
हाँ, मतलब काम सिर्फ नंबर निकालने पर खत्म नहीं होता।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, स्वास्थ्य की खबरें पढ़ते वक्त हम ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं। जैसे खबर आई, दवा एक्स से खतरा 30% कम हुआ, तो हम पूछ सकते हैं, अच्छा, पर पहले खतरा कितना था, एब्सोल्यूट रिस्क क्या था?
हाँ, 30% सुनने में बहुत लगता है, पर अगर शुरुआती खतरा ही बहुत कम हो तो?
बिल्कुल, क्या ये कमी मेरे लिए मायने रखती है? और हम सुनी सुनाई बातों, जैसे मेरे पड़ोसी ने ये खाया और ठीक हो गया, और बड़े वैज्ञानिक अध्ययनों के फर्क को समझ सकते हैं।
सही, और निवेश करते समय
वहां भी सिर्फ औसत रिटर्न ना देखकर उसकी अस्थिरता मतलब रिस्क को भी समझना, स्टैंडर्ड डेविएशन देखना।
काम की जगह पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है।
क्यों नहीं, अगर कोई बदलाव किया गया है, जैसे वेबसाइट का नया डिजाइन, तो एबी टेस्टिंग जैसे तरीकों से पता लगाना कि क्या वाकई उससे फर्क पड़ा या ये महज इत्तेफाक था।
अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है।
हाँ, और एक नागरिक के तौर पर,
हाँ, ये सबसे जरूरी है शायद।
जब हम अखबारों में चुनावी पोल देखते हैं, आर्थिक विकास के आंकड़े देखते हैं, या किसी सरकारी योजना की सफलता के दावे,
तो हम सवाल पूछ सकते हैं।
हाँ, सर्वे का सैंपल साइज क्या था, मार्जिन ऑफ एरर कितना है, सवाल कैसे पूछे गए थे,
क्या ग्राफ का स्केल भ्रामक तो नहीं बनाया गया, वाई एक्सिस कहाँ से शुरू हो रहा है।
बिल्कुल, ये छोटे छोटे सवाल हमें ज्यादा जागरूक और आप कह सकती हैं कम आसानी से बहकने वाला नागरिक बनाते हैं।
मेरे लिए इस चर्चा का सबसे बड़ा सार यही है कि सांख्यिकी हमें सवाल पूछना सिखाती है, ये हमें डेटा के दावों को यूं ही मान लेने से रोकती है।
सही कहा।
ये हमें विनम्र बनाती है कि हाँ, हम सब कुछ नहीं जानते, पर साथ ही ये हमें अधूरे सबूतों पर भी बेहतर सोचने का आत्मविश्वास देती है।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये थी कि कैसे हैंडे इन अनिश्चितता को एक मतलब दुश्मन की तरह नहीं देखते, वो इसे जिंदगी की सच्चाई मानते हैं,
रियलिटी का हिस्सा।
हाँ, और सांख्यिकी हमें इसी अनिश्चितता के साथ जीना, सोचना और फैसले लेना सिखाती है।
ये डरने की चीज नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये समझने और सशक्त होने की चीज है, ये असल में दुनिया को नेविगेट करने का एक जरूरी कंपस है।
बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।